समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कंचन थाल सजा सौरभ से ओ फूलों की रानी, अलसाई सी चली कहो करने किसकी अगवानी। वैभव का उन्माद रूप की ये कैसी नादानी, ऊषे भूल जाना न उसकी करुणामयी कहानी। श्रोताओं, ये पंक्तियां हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्हें आज हम उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। इस बीच ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन आज सवेरे का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के ताजा तरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज के आज सवेरे की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार, और शगुन आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सिद्धार्थ, नमस्कार एंड हार्ट फेल्ट हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड टुडे एज सिद्धार्थ आल्सो टोल्ड यू, लेट मी आल्सो टेल यू, वी विल गिव यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग यू मेट्रो सिटी अपडेट्स, एंड विल एक्सप्लोर टुडेज हिस्ट्री which is 24th of April 2025, this particular day's history. And as Siddharth told you in the beginning, we have many, many interesting stuff which we have lined up for you, many, many personalities which we are going to be talking about in our last segment. So stay tuned with us, listeners, till the very end. We'll begin with the headlines first, shall we?
जी हां, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी सीमा चौकी बंद कर दी गई है। कल शाम प्रधानमंत्री के आवास पर हुई सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाताओं को बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी।
The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the Sark visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India.
विदेश सचिव ने कहा कि पहली मई तक उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम कर 30 की जाएगी।
The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account.
इस बीच पूरे विश्व में विभिन्न देशों की सरकारों ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है और एक स्वर से इस आतंकी हमले की निंदा की है। मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के इस फैसले की सराहना की है।
Well, continuing with that, United Nations Secretary General Antonio Guterres has strongly condemned the terrorist strike at Pahalgam in Jammu and Kashmir that killed 26 people. He stressed that attacks against civilians are unacceptable under any circumstances. The Secretary General's spokesperson, Stefan Dujarric, said that Mr. Guterres has offered his heartfelt condolences to the bereaved families of the victims. The targeted attack by a front organization of the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba killed tourists on Tuesday at Pahalgam, a popular tourism spot. Government has convened an all-party meeting in New Delhi today in view of Pahalgam terror attack incident. Sources said the meeting will take place at Parliament House complex at 6 p.m.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे 13,480 करोड़ रुपए की लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें रेलवे और बिजली क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मधुबनी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तथा 3 रेल लाइनों और 2 रेल पुलों का उद्घाटन करेंगे।
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the largest international steel event, India Steel 2025, at the Bombay Exhibition Centre in Mumbai today. Mr. Modi will address the premier steel industry event through video conferencing. The 3-day international exhibition and conference will bring together leading stakeholders from across the global steel value chain to discuss the future trajectory of the sector. The conference will witness the presence of high-level participation from various central ministries and states, including chief ministers and union ministers. The Ministry of Steel said the 6th edition of this biennial event is being organized, keeping in view the ambitious growth in the steel sector.
और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात हैदराबाद में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट पर 146 रन बनाकर जीत का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेंट बोल्ट सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 26 रन देकर 4 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
वेल, लेट मी शेयर अनदर स्पोर्ट्स अपडेट हियर विद आवर लिसनर्स। ओलंपियन विद्या रामराज वन गोल्ड इन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स एट द नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन इन कोची यस्टरडे, क्लॉकिंग 56.04 सेकेंड्स टू क्वालिफाई फॉर द एशियन चैंपियनशिप्स 2025। Her time also set a new meet record, surpassing Sarita Ben Gaikwad's 2019 mark of 57.21 seconds. Anuar finished second with 58.26 seconds, while Ashwiniar took third with 1 minute 2.41 seconds. In the men's 400-meter hurdles, Yashas Palaksh, claimed gold with a personal best of 49.32 seconds. In the men's hammer throw now, Damneet Singh won gold with a 68.3-meter effort, while Praveen Kumar took silver and Gurdev Singh got bronze. Now, in the women's triple jump, Niharika Vashisht secured gold with a 13.49-meter leap.
और शगुन, इस समय पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और ये वो समय है जब हम सभी को बहुत ही संगठित रहना होगा, और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा है जिनके परिजन इस जघन्य आतंकी हमले में मारे गए हैं। और इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कल हैदराबाद में आईपीएल मैच के दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैच शुरू होने से पहले उनकी स्मृति में 60 सेकंड का मौन रखा गया। इसके बाद शोक की औपचारिक घोषणा की गई। इसमें स्टेडियम में उपस्थित दर्शक और सीधा प्रसारण देख रहे लोग भी श्रद्धांजलि में शामिल हो सके। दोनों टीमों के कप्तानों ने संवेदना व्यक्त करते हुए इस नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की। पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों, कमेंटेटर और सहयोगी कर्मचारियों ने वहां पर काली पट्टी लगाई। आंखों देखा हाल सुना रहे कमेंटेटर्स ने इस मौन श्रद्धांजलि का उल्लेख कर पूरे राष्ट्र से अपना दुख साझा किया। बीसीसीआई ने माहौल की गरिमा बनाए रखते हुए इस मैच को बिना किसी आतिशबाजी, संगीत और चीयरलीडर्स के कराने का फैसला किया। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने बताया कि क्रिकेट समुदाय इस आतंकी घटना में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर गहरे दुख में है। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
जी, our heartfelt condolences with the bereaved families of the bereaved. Well, one more news I have for you listeners. World Immunization Week 2025 by the World Health Organization, WHO, will begin from today across the globe. The week-long campaign will last till 30th of this month. This week is celebrated in the last week of April with the aim to promote the life-saving power of immunization. Very rightly so. The theme, let me tell you about it, this year it is Immunization for All is Humanly Possible. And this theme, it emphasizes the importance of ensuring everyone, regardless of age or location, has access to life-saving vaccines. Well, WHO claims that over the last 50 years, essential vaccines have saved at least 15 crore 40 lakh lives.
बिल्कुल शगुन, और यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारा देश भारत वैक्सीनेशन का एक हब है. और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि कोविड के समय में किस तरह से हमारे देश ने पूरे विश्व को, न सिर्फ हमने अपने लिए वैक्सीन बनाई बल्कि पूरी दुनिया को वैक्सीन हमने पहुंचाई और लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई. और वैक्सीनेशन में शगुन सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमेशा ये बीमारी होने के पहले लगाई जाती है, तो इसलिए स्पेशली जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए लोग सरकारी जो केंद्र हैं वहां पर जा सकते हैं और वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में और बड़ों में भी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है.
वेल, वैक्सीनेशन वेरी सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल against harmful diseases well in advance, I should say.
बिल्कुल, तो जो लोग हमें इस समय सुन रहे हैं वो जरूर अपना वैक्सीनेशन अगर ड्यू है तो उसे करवाएं. श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज का, और सबसे पहले चेन्नई की खबरों के साथ हैं शकुन.
यस सिद्धार्थ, बिगिनिंग विद चेन्नई हियर. At least 12 people involved in high-stakes cyber crimes such as investment fraud, scholarship schemes and a digital arrest scam were arrested by the Chennai City Police over the weekend. Police said the gangs had international links. Following a tip-off, a team led by Superintendent of Police Shanaz tracked a gang of 8 suspects running an online trading scam. The criminals, operating in coordination with their Sri Lankan counterparts, targeted victims by offering fake high return investment opportunities. In one of the cases, a doctor was tricked into investing over 87.9 lakh through a fraudulent online platform. Further investigations revealed the suspects were also involved in scholarship scams targeting students. The bank account in question was tied to 99 complaints registered through the National Cybercrime Reporting Portal. I have another update here from Chennai, Siddharth. The American Center at the U.S. Consulate General Chennai has invited school students to attend free summer activities which are focused on science, technology, engineering and maths, which commenced on 21st April and go on till 30th May this year. The program for students in classes 8 till 12th includes immersive hands-on learning activities and from Mondays till Thursdays with movie screenings which are scheduled for Fridays. Students can enroll themselves in Chennai AM Center at state.gov or WhatsApp 73056-7662. While STEM learning tools including coding kits such as Microbits and Snap Circuits, MergeCube, augmented reality experiences, virtual reality goggles, a 3D printer and NASA-themed Lego sets available for participants to immerse in this environment of hands-on enrichment. Over to you, Siddharth.
जी हाँ, चेन्नई के बाद नजर डालते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों पर. और शगुन, दिल्ली में धीरे धीरे ट्रैफिक अब हम देखें तो बढ़ता ही जा रहा है, और स्पेशली जो ऑफिस आवर्स होते हैं उस समय आपको गाड़ी ड्राइव करना बेहद मुश्किल होता है.
ट्रैफिक इज एट इट्स पीक.
बिल्कुल, तो ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है. इससे न सिर्फ ट्रैफिक अनुशासित रहता है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आती है. इसी कड़ी में राजधानी में नागरिकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, इस जिसमें साइकिल चालकों को लेकर सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी और दृश्यता बढ़ाने के साथ साथ दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए उनकी साइकिलों पर रिफ्लेक्टिव टेप चिपका गए. क्योंकि यहाँ पे शगुन रिफ्लेक्टिव टेप इतना एक एसेंशियल कंपोनेंट है एक्सीडेंट से बचने के लिए, क्योंकि कई बार अगर वाहन के पीछे अगर ये लगे हो तो कभी विजिबिलिटी कम है तो ऐसे में हमें दिखाई पड़ता है और हम जो दुर्घटनाओं के चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं.
राइटली सेड.
इन जागरूकता अभियानों का उद्देश्य वाहन चालकों, एनसीसी कैडेटों और आम जनता को यातायात नियमों, महिलाओं की सुरक्षा और जिम्मेदार सड़क उपयोग के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जागरूक करता है. और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और खासतौर से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें शगुन, तो अक्सर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में व्यस्त होते हैं और ऐसे में अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं.
दे निग्लेक्ट देयर हेल्थ एंड यू नो फूड एंड ईटिंग हैबिट्स आल्सो दे गेट अफेक्टेड व्हाइल एग्जाम्स एंड ऑल.
बिल्कुल. तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय DU के परिसर में आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता विषय पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया. इस मेले में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किए गए. और धीरे धीरे श्रोताओं हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में डिजी लॉकर एक ऐसी सुविधा है जिससे हम ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों को रख सकते हैं. और इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट्स को डिजी लॉकर से जोड़ दिया है. अब आप अपने जन्म प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं. निगम ने बताया है कि यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जो नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों तक सहज और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है. और अब एक महत्वपूर्ण सूचना. दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि ग्रेटर कैलाश स्थित पंप हाउस में मरम्मत कार्य के कारण 25 और 26 अप्रैल को दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जल बोर्ड के अनुसार जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी उनमें चिराग दिल्ली, खिड़की एक्सटेंशन, बनशील विहार, साकेत और इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. दिल्ली जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है. और अगर आपको किसी इमरजेंसी में टैंकर मंगाना पड़ सकता है तो इसके लिए हम आपको कंट्रोल रूम का नंबर बता देते हैं. सबसे पहले दिल्ली का कोड यानी 011-29234746 यानी 29234746 और 1916 जो कि दिल्ली जल बोर्ड का नंबर है, इस पर फोन करके आप पानी के टैंकर मंगा सकते हैं. तो ये थे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचार. अब हैदराबाद मेट्रो के समाचारों के साथ हैं शगुन
जी. In the biennial election held for the lone member of Legislative Council from Hyderabad Local Authority's constituency of the Greater Hyderabad Municipal Corporation, 78.57% votes were polled yesterday. The contest was between Dr. N. Gautam Rao of the BJP and Mirza Riazul Hassan Effendi of the AIMIM. The ruling Congress did not field a candidate, while the opposition BRS has asked its corporators to abstain from voting. The ballot boxes were brought to the reception centre with security and were stored in the strong room. The counting of votes will take place tomorrow. Siddharth, which metro city are you picking up now?
जी हाँ, अब हम रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों का. मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत लोगों को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाने के लिए राज्य जल्द ही इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर शुरू करने जा रहा है. इस संबंध में कल मुंबई में एक समीक्षा बैठक हुई जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेटा के साथ इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. बढ़ते अगली खबर की ओर. राजभाषा पर संसदीय समिति के सदस्यों ने हाल ही में मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया. सदस्यों को भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक यात्रा, तकनीकी प्रगति, दुर्लभ पोस्टर और संग्रहों के बारे में विस्तार से बताया गया. और अब रुख करते हैं देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु के समाचारों की ओर शगुन के साथ.
राइट सिद्धार्थ, The Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry, FKCCI, has voiced concern over the recent hike in minimum wages across Karnataka. It has termed the move detrimental to the micro, small and medium enterprises in the state. The small industrial units operating from Peenya Industrial Estate have flagged the issue of increasing the variable dearness allowance and resultant wage hike that it argues will trigger an unviable financial crisis. FKCCI President M.J. Balakrishnan has said that wage hike to workers will force at least 20% of the small units to close down. Saying that the Federation supports fair pay packages to workers, the President has, however, noted that indiscriminate wage hikes without assessing the paying capacity of small-scale industries will lead to a situation where many will consider shutting down their units. This was the update I had from Bengaluru. Over to you, Siddharth.
और नजर डालते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के समाचारों पर. पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 100 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र बनाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्वालटोर में सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र का उद्घाटन किया था. एक जर्मन संगठन ने संयंत्र के निर्माण में मदद की थी. तो श्रोताओं, ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर सिद्धार्थ और शगुन के साथ। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक हो चुका है 7:49:43। और अब जानते हैं कि आज देश के प्रमुख महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और शगुन, इस समय पुरजोर गर्मी पड़ रही है और ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना होगा। श्रोताओं, खाली पेट धूप में ना निकलें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें और गर्मियों के फल जैसे खरबूजे और तरबूजे का सेवन करते रहें। नींबू पानी भी सेवन का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यानी कुल मिलाकर हमें अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। मुंबई में जी बिल्कुल, तो इस समय देख रहे हैं कि टेम्परेचर काफी ज्यादा हो रहा है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, वहां पर तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
Yes, listeners, let me tell you that Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Now talking about Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky with haze. And the temperature, it will hover between minimum of 27 degrees and a maximum of 41 degrees.
तो अगर हम देखे थे जितने भी मेट्रोज है वहाँ पर करीब 40 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर क्रॉस कर रहा है, तो सब जगह ही गर्मी
टेम्परेचर्स आर सोरिंग।
जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उसमें दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। 1898 में स्पेन ने अमरीका के खिलाफ आज ही के दिन युद्ध की घोषणा की थी।
Yes, taking the listeners a little back,
जी.
In the year 1792, French army officer Claude Joseph Rouget de Lisle composed La Marseillaise, the French national anthem, La Marseillaise. Now, in the year 1800, the Library of Congress was officially founded as U.S. President John Adams approved the $5,000 appropriated to acquire such books as may be necessary for the use of Congress, and it eventually became the largest library in the world.
और 1926 में आज ही के दिन बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और श्रोताओं, याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
जी,
और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, कवि और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर की। राष्ट्रकवि दिनकर को आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में याद किया जाता है। दिनकर की मुख्य रचनाओं में कुरुक्षेत, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छां, सूरज का ब्याह लोगों के दिलों के बेहद करीब हैं। आइए सुनते हैं दिनकर को, खास हम आपके लिए लेकर आए हैं।
झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, ओ तान तान फन भ्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी माया के मुकुलितया कुंचन में, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में, अस्तित्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में, ओ कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, ओ तान तान फन भ्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं।
जी हाँ, ये रचना दिनकर की आपने उन्हीं की आवाज में सुना। और दिनकर को उनके काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 में साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है।
Well, let me also add that his voice, his thoughts and his writings were in sync with the voice of the common man, and he has left behind a rich legacy of poetry, essays and also other literary works. Well, moving on, let me talk about another English writer here. Now let me talk about a writer, but an English writer, Daniel Defoe. Well, his literary career, it took off in the year 1697 and with the publication An Essay Upon Projects, and he went on to produce significant works that included political pamphlets, poetry and novels. Let me talk about his most famous novel, Robinson Crusoe, which was published in 1719 and is regarded as one of the first modern novels.
और आज हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक यामिनी रॉय को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। लगभग 6 दशकों के करियर में उन्होंने सभी के दिलों में जगह बनाई। 1926 में यामिनी रॉय की कालीघाट प्रभावित क्षेत्र की पहली प्रदर्शनी जो है लगाई गई, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई, और 1935 में उन्हें उनकी मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस अ पूल चित्र के लिए वायसराय का स्वर्ण पदक दिया गया। 1955 में यामिनी रॉय को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, गायक, शास्त्रीय संगीतज्ञ तथा नाट्य संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की। वो महान गायिका लता मंगेशकर के पिता थे दीनानाथ मंगेशकर। 5 साल की उम्र में श्री बाबा मां शेलकर से गायन और संगीत की शिक्षा लेने लगे थे और ग्वालियर संगीत विद्यालय के छात्र भी रहे। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 अप्रैल को यानी मास्टर दीनानाथ की स्मृति दिवस पर आयोजित किए जाने की परंपरा रही है। बैकग्राउंड में आप उनकी आवाज सुन रहे हैं।
Well, listeners, today we are also remembering Ramesh Singh Methiani, Shailesh, well, popularly known as Shailesh Methiani, writer, poet and essayist. Well, his short stories and novels are read not only in the hilly state of Uttarakhand, but all over the world by readers of Hindi literature. And well, the people who read his books became closely familiar to the towns and villages of Uttarakhand region and the hilly region and came to love them.
और श्रोताओं, आज जब भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो कॉपी, कट, पेस्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? जी हाँ, इसकी खोज की अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर ने, जिनकी आज जयंती है। वे कंप्यूटर में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कट, कॉपी, पेस्ट यूजर इंटरफेस की खोज करता थे और लैरी टेस्लर को यूजर इंटरफेस को लेकर कई बड़े रिसर्च के लिए जाना जाता है।
Let me now talk about a psychologist, G. Stanley Hall. He gave early impetus and direction to the development of psychology. Well, frequently he has been regarded as the founder of child psychology and educational psychology as well. He also did much to direct into the psychological currents of his time, the ideas of Charles Darwin, Sigmund Freud and also many others.
और श्रोताओं, आज ही जयंती है सुप्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार दंडपाणि जयकांतन की। वो भारतीय साहित्य के सबसे अच्छे लेखकों में से एक थे। सन 1972 में दंडपाणि को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2002 में दंडपाणि जयकांतन को साहित्य के सबसे बड़े सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और श्रोताओं, आज ही जयंती है कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता राजकुमार की, जिनका वास्तविक नाम सिंगनालूर पुतु स्वामाया मुथुराज है। राजकुमार को कन्नड़ फिल्मों का महान नायक माना जाता है। उनका जन्म 24 अप्रैल 1928 को चेन्नई में हुआ था और राजकुमार को राष्ट्रीय स्तर पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने का श्रेय जाता है।
Well, widely acclaimed as one of the finest actors in the history of Indian cinema, he is considered a cultural icon and he entered the film industry after his long stint as a dramatist first.
और 1995 में राजकुमार को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजकुमार को 1983 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और आज हम मैक मोहन को याद कर रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे और आज उनकी जयंती है। वो मुख्य रूप से खलनायक के किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे। साल 1964 में मैक मोहन ने फिल्म हकीकत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
वेल, लेट मी टॉक अबाउट अनदर लिटरेरी आर्टिस्ट हियर, विला साइबर्ट कैथर, नोन फॉर हर नॉवेल्स ऑफ लाइफ ऑन द ग्रेट प्लेन्स इंक्लूडिंग ओ पायनियर्स, द सॉन्ग ऑफ द लार्क एंड माय एंटोनिया। Well, she emphasized on a sense of place, which is an important element in her fiction.
और श्रोताओं, आज ही जयंती है शम्मी की, जिन्होंने 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। करीब 6.5 दशक पहले उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और शुरुआती दौर में कई फिल्मों में नायिका और सहनायिका के तौर पर नजर आने के बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया। इस लंबे अंतराल में उनकी अभिनय यात्रा बिना किसी विराम के लगातार जारी रही।
कभी भरते हैं
Well, today it's also Sachin Ramesh Tendulkar's birthday. Well, throughout his illustrious career, which spanned over two decades, he shattered numerous records and set benchmarks.
और श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।